मेहर की सलाह आदित्य को बेहद पसंद आई। उसे लगा कि मेहर एक समझदार और दूरदर्शी लड़का है। असल में आदित्य खुद भी यही चाहता था कि निशा किसी चीज़ को सीरियसली ले और कुछ हासिल करे। उसे लगा कि अगर निशा को कामयाब होना है तो उसे भी ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी ही चाहिए। जीजू, मेहर आदित्य से बोला, मैं निशा से कुछ बात करना चाहता हूँ। ये फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहती है तो उसे कुछ ज़रूरी बातें पहले से जान लेनी चाहिए। अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो तुम लोग ऐसा करो, आदित्य मुस्कराया, मेरे ऑफिस में चले जाओ, वहीं बैठकर बात कर लो। यहाँ सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त हैं, तुम्हें आराम से बात करने का मौका मिल जाएगा। आदित्य ने जानबूझकर उन्हें ऑफिस में भेजा था। असल में ये उसका प्लान था। निशा को भी मेहर से अकेले में बात करने का बहाना चाहिए था और मौका उसे मिल गया। निशा और मेहर के ऑफिस में जाते ही आदित्य ने मनाल से कहा, मुझे अपने कमरे में थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं लेकर आती हूँ, मनाल बोली। नहीं नहीं, तुम अपनी मॉम डैड के साथ समय बिताओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। असल में आदित्य के ऑफिस में एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ था जिसे वो अपने लैपटॉप से लाइव देख सकता था। उसे निशा और मेहर की बातचीत सुननी थी क्योंकि ये उसकी बहन का मामला था। वो कोई कोताही नहीं बरतना चाहता था। आदित्य ने लैपटॉप ऑन किया और दोनों को स्क्रीन पर देखा। ऑफिस में दाखिल होते ही निशा ने अचानक मेहर के गले में बाहें डाल दी। निशा, ये क्या कर रही हो? मेहर एकदम पीछे हट गया। दूर बैठो मुझसे, ऐसे बच्चों जैसी हरकत मत करो। तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हो? निशा ने आंखें भरते हुए कहा। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो निशा, मेहर ने थोड़ी नरमी से कहा, तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझता हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ी समझदारी भी दिखाओ। दोनों अब सोफे पर बैठ चुके थे। हाँ बताओ, निशा गुस्से से बोली, क्या कहना चाहते हो? जल्दी बोलो, मुझे ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना। देखो निशा, मेहर ने गंभीरता से कहा, जब तुम फैक्ट्री ज्वाइन करोगी तो किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम आदित्य राजवंश की बहन हो या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम एक सिंपल एम्प्लॉय की तरह वहाँ काम करोगी। मुझे उम्मीद है तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात? निशा उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं वहाँ कहूँगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, किसी को नहीं जानती, बिल्कुल अनजान हूँ उस दुनिया से। रुको, मेहर ने हाथ बढ़ाकर रोका, मैंने बात अभी पूरी भी नहीं की। अब क्या बचा है कहने को? सब कुछ तो बोल ही दिया तुमने। निशा भी चिढ़ी हुई थी। एक और बात, मेहर थोड़ा सख्ती से बोला, जब तुम फैक्ट्री आओगी ना आगे से डीप गले की ड्रेस पहनना, ना पीछे से, ना ही ऐसी कोई ड्रेसेस जिसमें ये गोरी तांगे या कमर दिखती हूँ। तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है छोटे बच्चे भी ज्यादा ढंग के हुए होते हैं। निशा मुस्कुराई, पास आकर बैठ गई। उसने उसके गाल खींचते हुए कहा, ठीक है बाबा, ना आगे से डीप ना पीछे से, गोरी कमर भी नहीं दिखेगी, मैं बिल्कुल ढंग से कपड़े पहन कर आऊंगी। और ये क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स छोड़ो, मेहर ने अब भी गुस्से में कहा, समझी? आदित्य की हंसी, भाई का संतोष, ये सब देखकर आदित्य अपने कमरे में अकेले बैठकर हंस पड़ा। सचमुच निशा, तूने भी मेरी तरह एक जबरदस्त पीस पसंद किया है, वो खुद से बोल पड़ा। एक मेरी मनाल है जिसे मैं आज तक हैंडल नहीं कर सका, और देखो इस मेहर खन्ना को, एक ही दिन में निशा को काबू में कर लिया। निशा जो किसी की सुनती ही नहीं, मानना पड़ेगा ये लड़का पहुंचा हुआ है। ऑफिस में दोनों की बातचीत अब सामान्य हो चली थी। आदित्य को अब ज्यादा कुछ सुनने की जरूरत नहीं लगी। वैसे भी वो जानता था कि किसी की प्राइवेट बातें सुनना गलत है। उसे निशा की पसंद पसंद आई थी और अब उसका मन पक्का हो गया था। मेहर में दम है, उसने सोचा, वो एक दिन जरूर कामयाब बिजनेसमैन बनेगा। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी उसकी हेल्प करूंगा, आखिर मैं आदित्य राजवंश हूँ। आदित्य ने तुरंत किसी को फोन किया। हाँ, मेहर खन्ना की रिपोर्ट तैयार हो रही है ना? उसने पूछा। उधर से जवाब मिला, जी सर, कल सुबह तक सारी रिपोर्ट आपकी टेबल पर होगी। ज्यादातर बातें मैं पता कर चुका हूँ, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं उनकी रिपोर्ट आज रात तक फाइनल हो जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हालांकि आदित्य को पहले ही यकीन हो गया था कि मेहर अच्छा लड़का है, फिर भी वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहता था। जब तक उसे रिपोर्ट नहीं मिलती वो कुछ भी तय नहीं करेगा। अंत में आदित्य मुस्कुराया और सोचने लगा, जिसने मेरी बहन के लिए इतनी गंभीरता से सोचा, जो खुद भी मेहनत करना चाहता है, वो लड़का बेशक मेरे परिवार के लायक है।